न नहीं उच्छिष्टम झूठा भोजन चंडिका अन्नम देवी काली को चढ़ाया गया भोजन च तथा स अमीसम मांस से युक्त ब्रिसलाहुतम शूद्र द्वारा लाया हुआ भुंजित खाएं उदकया रजस्वला स्त्री द्वारा दृष्टम देखा गया पीवेतन नहीं पिए अंजलिना दोनों हाथों के अंगुली द्वारा तू भी अप जल प्रभुपाद कृत अनुवाद एवं तात्पर्य कभी भी झूठा भोजन ना खाएं देवी काली तथा दुर्गा को चढ़ाया हुआ प्रसाद ना खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु ना खाएं शूद्र द्वारा लाई गई या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को ना खाएं अंजलि से पानी ना पिए कृपया दोहराइए कभी भी झूठा भोजन ना खाएं देवी काली या दुर्गा को चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु को ना खाएं शूद्र द्वारा लाई गई या शूद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा राजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं, अंजलि से पानी ना पिए तात्पर्य सामान्य तो देवी काली पर मांस तथा मछली के युक्त भोजन चढ़ाया जाता है अतः कश्यप मुनि ने अपने पत्नी को ऐसे झूठे प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मना किया है वास्तव में वैष्णवों को देवताओं पर चढ़ी हुई किसी भी भोज्य सामग्री को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है उन्हें तो भगवान विष्णु पर चढ़ाए गए प्रसाद को ही ग्रहण करना चाहिए इन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप मुनि अपने पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे थे जय जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेयं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं पादं सगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिण
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते उपेत गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ आज दो श्लोक है, तो एक श्लोक तो हम रिसाइट कर लिए और एक श्लोक इस प्रकार है। नापस्तोष्णा स्नायन कुप्येत न संभासे दुर्जने न वसीता धौत वास स्त्रर्जंत विद्रुतम क्वचित। अनुवाद, कश्यप मुनि ने आगे कहा, हे कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी ना घुसें, कभी क्रोध ना करें और दुष्ट लोगों से कभी बोलें या संगति करें, कभी भी बिना धुले वस्त्र ना पहने और पहले धारण की गई माला को कभी ना पहने। तो ये जो प्रसंग हम सुनते आ रहे हैं, ये प्रसंग इस प्रकार है, ये षष्ठ स्कंध के 18वां अध्याय है। उससे पहले काफी हम बहुत कुछ इससे पहले हम श्रवण किए, षष्ठ स्कंध का जो भी इससे संपर्कित जो जो चीजें हैं। तो अभी ये कश्यप और दिति का संवाद ये चल रहा है। दिति का जो संतान हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, ये दोनों को भगवान वध किए और इंद्र जो है उसका कारण रहे। एक्चुअली इस जगत में इंद्रदेव को जो है ना ये सब चीजों को दिया गया है दायित्व भार संभालने के लिए। कोई भी प्रकार का असुविधा इस धरापृष्ठ में होगा तो उन्हीं के ऊपर दायित्व दिया गया है। वो उसको ब्रह्मा जी के पास, फिर भगवान विष्णु के पास ये सब समस्याओं को लेके जाते हैं। यदि उनके द्वारा समाधान नहीं होता है तब धीरे धीरे भगवान विष्णु को ही इस चीजों में हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जो इतिहास सब जानते हैं कि कितने ही बड़ा भयानक थे और भगवान कैसे उनको मारे। तो दिति इसको पूर्ण रूप में इंद्र को ही दोषी साब्यस्त किए कि हाँ उन्हीं के कारण से जो है ये उनके दो संतान मारे गए। तब वो अभी मन में ये इच्छा प्रकट किए कि मैं जैसे भी हो इंद्र को मारूंगा। तो सबका अपना अपना एक इच्छा रहता है, अलग अलग प्रक्रिया से उसको साधन करने के लिए। जैसे कि पुरुषों का शक्ति अलग प्रकार से है, नारियों का शक्ति अलग प्रकार से है, अलग अलग जीवों का अलग अलग इच्छा रहता है, अलग अलग प्रक्रिया रहता है अपने अपने लक्ष्य को साधने के लिए। तो यहां पर जो कश्यप और दिति का जो संवाद चल रहा है, यहां पर काफी वर्णन किया गया है नारी के स्वभाव को, कि नारी का स्वभाव किस प्रकार है और किस हिसाब से उसको चलाना चाहिए, वैष्णवों को किस हिसाब से नारियों के साथ, मतलब गृहस्थ वैष्णवों को नारियों के साथ किस हिसाब से संपर्क रख के हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद इस चीजों को, ये सब जो परपोर्ट में और थोड़ा क्लियर करके बताए हैं। तो हालांकि यूजुअली जीव का जो स्वभाव रहता है वो किसी भी स्थिति में वो अनचेंजेबल रहता है, चेंज होता नहीं इतना जल्दी। भले ही हम वैष्णव बने या कुछ भी बने, जो स्वभाव है नारी का, यहाँ पर हम किसी को यहाँ ये अखेत करके नहीं बोला जा रहा है कि कोई नारी और पुरुष है। वो आत्मा को वो शरीर मिलता है, बाद में कोई आत्मा नारी का शरीर मिलता है और उसके बाद में फिर पुरुष का भी शरीर मिल जाता है। किंतु एक उदाहरण शास्त्रों से दिया गया है, उसको हमें शिक्षा लेना चाहिए। यहाँ दिति का जो मनोभाव था वो कश्यप जी प्राथमिक अवस्था में समझ नहीं पाए। वो बड़ा ही प्रेम पूर्ण में उनका सेवा करने लगे और जो है ना उनको अति ही सुंदरता से सेवा करके संतुष्ट किया। तब वो इतना संतुष्ट हो गए और उनके प्रति स्वाभाविक जो नारी पुरुष को सेवा करता है वो पुरुष उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही आकर्षित होने लगे, धीरे धीरे इनका मनोभाव ये व्यक्त करने लगे कि मुझे जो इच्छा है बताइए, क्या इच्छा है आपका ना, मुझे इसे एक संतान चाहिए जो संतान इंद्र को मार सकता है। कोई पिता अपने पुत्र को मारने के लिए किसी को वर थोड़ी देंगे, ये तो और एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गया, क्योंकि इंद्र भी उन्हीं के ही संतान है। तो अभी ये किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ समझ नहीं पाए क्या करें। अच्छा पति उसको कहते हैं जो कि अपने परिवार को, अपने पत्नी को, सभी को एक बैलेंस करके चले। तो अच्छा पति यही हो सकता है जो पत्नी को हाँ में हाँ मिला सकता है, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है अभी। क्योंकि हालांकि पुरुष का भी अपना दायित्व तो है, नारी का भी अपना दायित्व तो है, दोनों को ही चलना पड़ेगा पटरी के ऊपर, तो दोनों का ही जरूरी है। अपना अपना स्वभाव है, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई तो छोड़ नहीं पाएंगे। पुरुष का स्वभाव अलग है, नारी का स्वभाव अलग है, किंतु पुरुष को थोड़ा काफी सैक्रिफाइस करना पड़ता है परिवार को मेंटेन करने के लिए। उसका ईगो को हर मोमेंट में जो है ना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसको जो है ना होम मिनिस्टर जो बॉस हैं उनको हाँ हाँ करके ही चलना पड़ता है। ठीक यहाँ पर भी कश्यप जी दिति का ये उसको ना हाँ बोल पा रहे हैं ना ना बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो उनको इतना सेवा करके उनसे वर प्राप्त किया है कि मुझे जो है ना देना पड़ेगा, और ये भी हाँ बोल दिए हैं दे देंगे। तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप एक साल के लिए एक व्रत करो, एक साल के लिए एक व्रत करो, जो व्रत करने के बाद जो संतान उत्पन्न होगा वो जो है इंद्र को जो है मार सकता है। तो इसमें बड़ा खुशी हो गए, बोले हाँ ठीक है मैं करूंगा। तो उसका प्रक्रिया भी समझा रहे हैं सब, सब उसमें क्या विधि है क्या निषेध है ये सब बतला रहे हैं। उसमें 31 नो सब बोले हैं क्या क्या नहीं करना है। हालांकि हम लोग जब और इसको डीपली हम सुनेंगे इस प्रसंग को, आचार्यों का कथा, तो कश्यप जी यही बतला रहे हैं कि दीति तुमसे जो संतान उत्पन्न होगा वो इंद्र का ही अनुयायी होगा, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड का जो परिचालना होता है तो ये धर्म के ऊपर आधारित करके होता है। यहाँ पर जो बड़े बड़े शक्तिशाली देवताओं को भी रखा गया है, उनके धर्म के आधार पर उनको बिठाया गया है। प्रभु जी पंखा थोड़ा बंद कर दीजिए, ठंड लग रहा है। तो यहां पर ये जो ना सब किया गया है उनमें से शुरुआत में और भी चला हुआ है कई एक चीजें। तो यहां पर कश्यप मुनि कहते हैं, नहाने समय पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, कभी क्रोध ना करना चाहिए और दुष्ट लोगों से कभी बोले या संगति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यूजुअली जो प्रथा है हम लोगों को पानी के अंदर जाके नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये भागवतम में लिखा गया है। और मैं दो तीन हमारे इस्कॉन के जो महान गुरु हैं उन लोगों से भी लेक्चर सुन रहा था, किंतु मुझे ये कई एक जगह पे मैं खुद देखा हूँ कि पानी में प्रवेश करके नहाया जाता है, तो इसलिए मेरा इसके प्रति इतना आइडिया नहीं है। क्रोध ना करें, ये स्वाभाविक है, क्रोध यदि कोई करते हैं तो लॉस किसका होता है? खुद का, दूसरे का तो होता नहीं है कभी, इसलिए क्रोध ना करें। और स्पेशली व्रत के समय यदि क्रोध करना मतलब वो व्रत नष्ट हो जाता है। और मैं एक देखा हुआ हूँ, यूजुअली जो व्रत करते हैं तो ऑटोमेटिक इंद्रियां थोड़ा ये क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो ही जाता है। हम लोग भाई पुरुषोत्तम महीना व्रत कर रहे थे, कुछ भक्त थे वो लोग परिक्रमा भी करते हैं, यदि परिक्रमा में कोई उनको डिस्टर्ब कर देता है तो थोड़ा क्रोध भाव आ जाता है इस प्रकार से, तो ये स्वतः आ जाता है। इसलिए ये शास्त्रों का ये निर्देश दिया गया है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गलत व्यक्तियों का संग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कात्यायनी संहिता से हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी कहते हैं, भले ही हमें जो आग के अंदर बैठ जाना मंजूर है किंतु गलत व्यक्तियों का संग हमें नहीं करना चाहिए, इतना भयानक है। क्योंकि असत संग के साथ यदि करेंगे हमारा भक्ति पूर्ण मात्रा में नष्ट हो जाता है। और कभी भी बिना धुले वस्त्र ना पहने और पहले धारण की गई माला को कभी ना पहने। यूजुअली इस्कॉन के भक्तों को तो धौत वस्त्र के बारे में तो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां भी जाते हैं इस्कॉन भक्तों का सबसे बड़ा कंप्लेन क्या है ना, सबसे ज्यादा पानी यही लोग खर्चा करते हैं, क्योंकि ये लोग इतना पानी यूज करते हैं धुलने में नहाने में, मतलब यही इन लोगों का चलता रहता है। मतलब सप्तगुण के स्तर से शायद नीचे उतरना इन लोगों का अभ्यास ही नहीं है। मतलब ये शास्त्र भी कहता है जो वैष्णव हैं जो ब्राह्मण हैं वो स्वाभाविक रूप से उस स्तर में रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर देखिएगा जो जो यूजुअली ब्रह्मचारी हैं वो लोग दिन में दो बार नहाते हैं या धोत वस्त्र पहनते हैं, जो सन्यासी हैं वो लोग भी दो तीन चार तीन चार बार नहाते हैं दो बार तीन बार, उन लोगों का भी वस्त्र बदल जाता है, धोत वस्त्र पहनते हैं। और जो गृहस्थों का जो वैष्णवीय नियम है वो सबको भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए वैष्णवों का जो आचरण आचरण में स्पेशली प्रभुपाद का जो स्टैंडर्ड दिया गया है इस्कॉन में हम देखने को पाएंगे बहुत ही सत्वगुण में शारीरिक शुद्धि बहुत ही उच्च मान का है। तो यहाँ पर और भी एक बात बताया गया है कि माला को जो ऑलरेडी पहन चुके हैं उसको पहनना नहीं चाहिए। हालांकि ये नॉर्मल माला के बारे में बताया गया है, भगवान के माला जो होता है उसको तो कोई भी पहन सकता है, कहीं रख दो कोई दूसरा उसको पहन लेंगे। कई एक जन ऐसे होते हैं माला के प्रति इतना उनके प्रति प्रेम होता है तो भगवान का माला तो पूरा एकदम दिनों दिन वही पहन के ही रखे रहते हैं। तो इसीलिए भगवान का माला कोई भी इसको पहन सकते हैं, किंतु नॉर्मल जो माला है उसको एक बार से दोबारा नहीं पहनना चाहिए। तो अभी यहाँ पर और एक भी छह निषेध बताया जा रहा है भोजन के बारे में। कभी भी झूठा भोजन ना खाएं, जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं कोई आधा भोजन करके छोड़ के चला गया, किंतु ये सब चीजें विष्णु और विष्णु तत्वों के लिए लागू नहीं होता, इतना तो ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि ये सब शास्त्रों का बहुत प्रमाण है कि किस हिसाब से भगवान का ये जो प्रसाद है उसके लिए कितने बड़े बड़े सब लीलाएं हो गई हैं। जगन्नाथ पुरी में हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो है यही भगवान का झूठन पाते हुए ही फिर भगवान शिव जी को प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी तांडव करने लगे, फिर पार्वती जी पूछ रहे हैं कि किस हिसाब से मुझे क्यों प्रसाद नहीं मिला, आप अकेले कैसे खा गए, मुझे आप कोई स्नेह नहीं करते हैं। तो फिर उनको वो उसके लिए तपस्या किए, फिर अभी जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद निकलता है फिर देवी जी के लिए लगता है, फिर जो है ना वो जगत के लिए प्राप्त किया जाता है उस महाप्रसाद, तब कहलाया जाता है। तो ये तो प्रसाद का तो बहुत बड़ा ये है। आप यदि जगन्नाथ पुरी यदि कोई जाएंगे मंदिर के अंदर जो गए हुए हैं तो प्राय तो गए होंगे, तो वहां पर देखिएगा जो ठाकुर जी का प्रसाद आते हैं तो उसको जो है ना यदि कोई पत्तल या कोई मिलता नहीं है पात्र भोजन करने के लिए, बहुत सारे व्यक्ति हैं प्रसादम के लिए, तो तुरंत वो पंडा क्या करते हैं, वो जो पहले से झूठा खाया हुआ वो पड़ा रहता है मिट्टी का उसी को उठा लेते हैं वो लोग। और आप यदि बोलोगे थोड़ा तो धो के देना चाहिए, वो उल्टा आपको जो है ना वो गाली देंगे। वो शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं कहते, महाप्रसाद के प्रति बड़ा अपराध होता है। तो और उसी में ही खाना परोस के खाया जाता है, तो उसमें चंडाल भी खाता है, उसमें ब्राह्मण भी खाता है, वैष्णव भी खाता है, सब मतलब ये महाप्रसाद का वैल्यू बताया गया है कि क्या है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कभी भी झूठा भोजन ना करें, जो नॉर्मल जो भोग इत्यादि वगैरह नहीं लगा रहता है, देवी काली को चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं। देवी काली को जो इत्यादि प्रसाद चढ़ता है उसको तो ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवताओं को बारे में हम भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे कि देवताओं के बारे में ये बताया गया है कि हमें प्रभुपाद लिखते हैं हमें मगरमच्छ शेर इत्यादि बाघ इत्यादि वगैरह को भले ही हम गले में लपेट लिया लेना अच्छा रहेगा, किंतु जो व्यक्ति ये देवताओं के बारे में जिन लोगों का रुचि है उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से है, मैं कहीं पढ़ा था रामानुजाचार्य के एक ग्रंथ में था, उनके शिष्यों को निर्देश दे रहे हैं भले ही आप लोग नष्ट हो जाएं या कष्ट मिले, किंतु जंगल भरी जंगल में जा रहे हैं, भले ही आपको कोई चीता शेर खा जाए, किंतु यदि कोई देवादेवी का मंदिर देखे वहां पर मत जाइए। मतलब इस प्रकार का स्ट्रिक्टली बोला गया है। हालांकि वैष्णवीय कॉन्सेप्ट देवादेवियों के लिए अलग है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट है किसी को भी हम झुक के प्रणाम करेंगे। प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं वैष्णव ये होते हैं कि चींटी को भी सम्मान करते हैं, तो हम लोग तो देवताओं का बात तो छोड़ दीजिए, उनको तो हम प्रणाम करना ही पड़ेगा। किंतु जिन व्यक्तियों का चेतना यही है कि ये जो है ना भगवान कृष्ण से भी बड़े हैं, तो उन लोगों की चेतनाओं के बारे में बताया गया है कि उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए हमें। तो यहां पर देवताओं के लिए वो बताया गया है तथा देवी काली और दुर्गा का जो जो भोजन करना या उनके भोग को ग्रहण करना इत्यादि को भी बताया गया है कि हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु हम भागवतम में देखते हैं कि देवता किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त को सहायता करते हैं, है ना। जड़भरत महाराज की प्रसंग में हम देखते हैं कि किस हिसाब से जड़भरत को डाकू लोग ले आए और काली माता के सामने काटने के लिए, तो काली माता वो सहन नहीं कर पाए। देखिए ये मेरा प्रभु का भक्त है, मेरा प्रभु का इतना शुद्ध परम भक्त है और इसको ये लोग किस हिसाब से ले आए हुए हैं काटने के लिए। तो वो तुरंत वो मूर्ति से ही बाहर निकले, निकल के वो इन्हीं डाकुओं को ही मार दिए। तो भगवान की जो भक्त हैं वो सदैव सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये जड़ जगत को ये दुर्गा माता या काली माता इन्हीं लोगों के द्वारा कंट्रोल करने के लिए रखा गया है, यही लोग ही इसको परिचालना करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और यही लोग ही सत्व रज और तमोगुण के त्रिशूल के द्वारा दंड देते हैं। किंतु जो भगवान की भक्त बन जाते हैं तो उन लोगों के प्रति इन लोगों का हाथ जोड़कर नमन रहता है। तो इसीलिए भक्तों को सदैव इन लोगों के प्रति नमन का भाव रहना चाहिए देवादेवियों के प्रति, क्योंकि इन लोगों का अपना अपना कर्तव्य कर्म दिया गया है, वो भगवान के कर्तव्य भगवान के दिए गए कर्तव्य कर्म को वो सुचारू रूप से उसको पालन कर रहे हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं भगवद गीता में भगवान इस देवताओं को लेके और थोड़ा चीजों को क्लियर किए हुए हैं। जैसे कि सातवां अध्याय में हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं, जिनके बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिन लोगों के बुद्धि नष्ट हो गया है वही लोग ही देवताओं के द्वारा परिचालित होते हैं। यहाँ पर और भी तात्पर्य में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद भागवत से एक तात्पर्य लिए हैं, भागवत से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदार अधि तीव्रेण भक्ति योगन यजते पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपने भौतिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं को अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं के शरण में जाते हैं। सामान्यतः इसे लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं क्योंकि वे निम्न स्तर गुणों वाले होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं को पूजा करते हैं। यहाँ पर तात अनुवाद में हम देख सकते हैं इसका कि किसी हिसाब से यहाँ बोल रहे हैं, कोई भी प्रकार का इच्छा हो हमारा तो हम लोग भगवान की चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर तात्पर्य में बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं देवता लोग जो ना कुछ बीमारी छुड़ाते हैं, जैसे भगवान सूर्यदेव बीमारी के लिए हम प्रार्थना करने से बीमारी मुक्त हो जाएंगे, तो कुछ लोगों का चेतना यही होता है कि वो भगवान से भी देवता लोग बड़े हैं और ये चीज दे सकते हैं। किंतु प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंत में बोलते हैं, वैष्णव लोग अच्छी तरह से जानते हैं भगवान ही सब कुछ हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। तो भगवान गोविंद सभी कारणों का कारण है ये, क्योंकि वो देवताओं को भी परिचालित करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का चेतना देवताओं में इत्यादि में प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये सब यहाँ निर्देश दिया गया है। और भी यहाँ पर और एक हम देख सकते हैं जो कि बताया गया है, मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु ना खाएं। ये कश्यप जी दीति को बोल रहे हैं, माछ मछली का मिश्रित कोई वस्तु को नहीं खाएं। एक वैष्णव को कभी ये बताया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब यहां माछ और मछली का मतलब अलग प्रकार से बताया जाता है। तो ये है कि शास्त्र में कहा गया है कि गाय का, भैंस का तथा बकरी का, इन तीनों का दुग्ध के अलावा और किसी का भी दुग्ध यदि होता है उसको मांस के साथ तुलना किया गया है। तो इसी हिसाब से जो है ये वैष्णवों को ये उदाहरण दिया जा रहा है कि माछ और मछली नहीं खाया जाए। शूद्रों द्वारा लाई गई या शूद्रों द्वारा स्पर्श की गई अथवा राजस्व वाला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को ना खाएं। जो राजस्व वाला स्त्री हैं और शूद्र हैं, इन दोनों के द्वारा स्पर्श किया गया या देखा हुआ कोई भी चीज को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध माना जाता है। तो भगवान का नाम यदि कोई करते हैं वो लोग सदैव शुद्ध माने जाएंगे, किंतु हमें कोशिश करना चाहिए ये सब चीजों से ऊपर उठ के भगवान का नाम का किसी को भी दिया जाना चाहिए। किंतु शास्त्रों में ये चीज दिया गया है तो भी इसको भी फॉलो करना चाहिए और अंजलि से पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी यहाँ निर्देश दिया गया है। तो आज यहीं पर ही भागवतम का विराम दिया जाएगा। जय श्रील प्रभुपाद की। किंतु बैठे रहिए क्योंकि यहाँ पर आज और दो और चीजें भी हैं, मध्वाचार्य की आविर्भाव और भगवान रामचंद्र विजय उत्सव, ये दोनों भी है। तो हमारे
ऊपर से जो निर्देश यही था कि भागवत में इसका ये चीजें भी हम आज श्रवण करेंगे। तो रामचंद्र विजय उत्सव, तो आज ये आज ही के दिन भगवान रामचंद्र ने रावण को मारे थे। तो भगवान रामचंद्र हम जानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो एक बहुत अच्छे राजा थे। सारा विश्व में वो प्रजाओं को जो शासन कर रहे थे अपने पिता और पुत्र के हिसाब से कर रहे थे। भगवान रामचंद्र की कथा तो सभी जानते हैं, रामायण को। तो किस हिसाब से वो आविर्भाव का कारण क्या है कि जिस जैसे ही ये समाज में या इस पृथ्वी में पाप का भार बढ़ जाता है, भगवान आविर्भाव होते हैं। तो वो आविर्भाव हुए और किस हिसाब से धीरे धीरे उनका 14 वर्ष का वनवास उनको ग्रहण करना पड़ा और फिर वो समुन्द्र में सेतु बनाए, बनाते हुए फिर रावण को बद्ध करने के लिए, क्योंकि रावण एक पापी व्यक्ति था और वो पाप कर्म किया था जो कि उनके माता सीता को हरण करके ले गया था भोग की इच्छा से। इस धरापृष्ठ में जब भी इस प्रकार का सब जघन्य कर्म होता है तब भगवान आके दंड देते हैं। हालांकि भगवान अपने ही व्यक्तियों को लेके आते हैं, ये रावण हुआ, कंस हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ, ये सब अपने ही लोग हैं। कुछ लोग, कुछ पार्षद हैं भगवान के जो कि स्वेच्छा में हाथ उठा के खड़े हैं, प्रभु हमें कौन सा सेवा मिलेगा, नहीं तुम्हें हम चाहते हैं कि तुम राक्षस बनो और मैं पीटूंगा, मुझे ये आनंद मिलेगा, हाँ ठीक है प्रभु मैं उसी को ग्रहण करूंगा। कल हम श्रवण कर रहे थे इंग्लिश भागवतम क्लास में, किस हिसाब से वो वर्णन कर रहे थे कि भगवान बलराम कैसे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ को स्थानांतरित हुए, क्यों स्थानांतरित हुए, बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहां पर जो है ना, भगवान आने से पहले वो बलराम जी के ऊपर ही वो सब कुछ करते हैं। जैसे कि वो आएंगे तो ये धरा, ये जो धाम देख रहे हैं, या वो कोई भी सिंहासन में बैठेंगे या शयन का बिस्तर, कहीं पर भी वो बलराम जी के माध्यम से ही आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ही भगवान अपना पार्षदों को ही लेके सब कुछ करते हैं, भले ही वो राक्षसी कर्म करें या अच्छा कर्म करें। तो ये जो रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, ये जितने भी हैं, ये सब भगवान की इच्छा से ही आते हैं और भगवान के नित्य पार्षद हैं ये सब। ये हमें दिखते हैं कि इन लोगों का अलग गति दिखता है, किंतु ये लोग भगवान की संतुष्टि करने के लिए ही आते हैं। तो इनका भगवान की संतुष्टि विधान यही होता है। तो यहाँ पर रावण का भी ये जो मारना आज के दिन, ये पाप का भार इस धराधाम में बढ़ा हुआ था, तो भगवान जो उसको काफी कोशिश कर रहे थे मारने के लिए, किंतु वो संभव हो नहीं पा रहा था। उसका सर मिट्टी में गिर जा रहा था, फिर से जो है ना वो जुड़ जाता था, अलग नया सर उत्पन्न हो जाता था, इस प्रकार से वो बड़ा ही दिक्कतपूर्ण था। तो तुरंत जो है ना उनको जो ब्रह्मास्त्र उनके पास था उसको वो ध्यान किए, और वो जो ब्रह्मास्त्र है वो भगवान इनके हाथ में प्राप्त, भगवान रामचंद्र के हाथ में प्राप्त हुआ दंडकारण्य में। तो ब्रह्मदेव इसको बनाए थे इंद्र के लिए, इंद्र के अपने शासन कार्य को, शासन भार को सही तरह से चलाने के लिए, किंतु किसी कारणवश तो वो फिर अगस्त मुनि के पास गया। तो ये अगस्त मुनि फिर जो है ना भगवान रामचंद्र जी को दे दिए थे। तो इसमें उस अस्त्र का वर्णन इस प्रकार करा जाता है कि ये जो है ना उसका जो उसके पिछले अंश को जो है गरुड़ जी के पंखों से बनाया गया था, उसके सामने का जो भाग है
वो छुचालो भाग जो है उसके अग्निदेव और उसका तेज को, उसका अग्निदेव और सूर्यदेव के द्वारा उसका तेज था, और उसका जो जो अस्त्र को जो भारसाम्य रखने के लिए मंदर पर्वत और एक पर्वत दोनों के द्वारा उसका भारसाम्य के लिए उन लोगों को स्थापना किया गया था, इतना शक्तिशाली अस्त्र था वो। तो भगवान ने रावण को मारने के बाद वो अस्त्र भी सीधा उन्हीं के पास फिर लौट आया। वास्तव में ये जितने भी अस्त्र हैं सब भगवान के चरण कमलों से ही निकलता है, ये लोग देते हैं उन लोगों को और ये देवताओं को देते हैं, देवता लोग जो है ना उनको हम लीलाओं में देख सकते हैं कि उनको दे रहे हैं, ये दिख रहा है। ये इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि छोटा सा बच्चा वो पिता को चॉकलेट खिलाता है, क्यों वो चॉकलेट का पैसा कहाँ से लाता है, वही पिता का ही तो पैसा है, उसको खरीद के दे देता है, वो कभी कभी खिला देता है, पिताजी बड़ा आनंद महसूस करते, पैसा उसी का सब कुछ उसी का, वो गोद में बैठ के खिला देता है, बड़ा आनंद प्राप्त कर लेते। तो भगवान का भी वही स्थिति है, भगवान ये लीलाएं लेते रहते हैं कि उसका जो जीव है को कभी देवता रूप में कभी मनुष्य रूप में वो उन्हीं को जो है ना कुछ कुछ दिया जाता है। इसलिए हम शास्त्रों में देख लेंगे वो जो है ना इंद्रदेव उनको कुछ दे दिए, वो कोई उनको रथ दे दिए, कोई उनको जो है ना अस्त्र दे दिए, हम लोग सोचते हैं अरे देवताओं से ये मिला देवताओं से वो मिला, जो अल्पबुद्धि संपन्न नहीं वो लोग तो उसी प्रसंग को और उछालते रहते हैं, ये देवताओं से वो मिला था, वो पार्टिकुलरली कुछ पूजा भी चालू कर देते हैं, ये देवताओं से भगवान रामचंद्र को मिला था, इस अस्त्र को मिला था, तो हम ये इस देवताओं को पूजा करने से होगा। अरे हमें ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि पिता पुत्र का जो संपर्क है, भगवान और जीव के अंदर जो संपर्क है, वो जो चीजों को यहाँ और डीप हिसाब से समझना चाहिए। वास्तव में प्रभुपाद जो फिलोसफी दिए हैं कल्पना से बाहर, ये जो फिलोसफी दिए हैं हम लोग यदि पढ़ेंगे इसको ना आचार्यों से, जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनमें और प्रभुपाद जी की फिलोसफी में कहीं भी आप एक पॉइंट का बूंद का भी आप अलग नहीं देखिएगा। हम अभी कुछ दिन अभी भक्ति शास्त्री चल रहा है, जो भी रेजिडेंटल भक्त हैं उन लोगों के द्वारा हो रहा है, काफी हम लोगों का भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ रहे थे, वहां देखे रूप गोस्वामी पाद जो लिखे हैं और प्रभुपाद जी के, उनमें कोई अंतर नहीं, कॉन्सेप्ट है। उससे पहले मैं जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, और मुझे लगा कि रूप गोस्वामी पाद और प्रभुपाद जी में कोई अंतर ही दिख नहीं रहा है, मतलब बाद में जब महाराज जी के द्वारा समझाया गया मतलब कोई अंतर ही मुझे नहीं मिला वहां पर। तो इसलिए कहने का मतलब है हमारे जो आचार्य, बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है, जैसे कि मेरे दिमाग में कई कॉन्सेप्ट था कि प्रभुपाद जी कभी कभी अलग अलग फील होता है, किंतु वास्तव में जब हम इस रियलाइजेशन में जाते हैं भक्ति के मार्ग में ज्यादा धीरे धीरे भक्तों का संग करके करके, तब हमें वो रियलाइजेशन होता है कि किस हिसाब से इनमें कोई भी अंतर नहीं है, प्रभुपाद वही शुद्ध भक्त हैं जो कि उन शुद्ध भक्तों का हूबहू मनोभाव को रिप्रेजेंट किए हैं। ये बहुत एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हाँ जैसे अल्प बुद्धि संपन्न लोग इसको समझेंगे ही नहीं। जैसे कई एक जगह पर हम देखते हैं कि भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को जो है ना ये लोग एक चीज दे दिए, देवता लोग आके दे रहे हैं, यहां तक कि ब्रजवासी लोग भी ये नहीं समझते थे, वो समझते थे भगवान कृष्ण को अलग, वो भाव अलग है, किंतु जनरल जो भाव लोगों का जो कॉन्सेप्ट में ये बता रहा हूं, हमें ये सोचना नहीं चाहिए। भगवान रामचंद्र की जय। तो आज मध्वाचार्य की भी आविर्भाव है, तो मध्वाचार्य जो है हमारे परंपरा के चार परंपराओं में से एक परंपरा है, उनमें से श्री ब्रह्म मध्व श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय और सनक संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चार परंपरा और संप्रदाय को जो है अनुमोदन किया गया है पद्म पुराण में। तो हम लोगों को इसी के अंदर में ही रहते हुए मंत्र इत्यादि ग्रहण करना चाहिए, शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, ये है ये शास्त्रों का जो कोड दिया गया है हम लोगों के लिए, जो नियम दिया गया है, क्योंकि आप हम यदि शास्त्र अध्ययन करेंगे वो इतना प्रैक्टिकल है हर व्यक्ति को, ये जो रियलाइज जो पढ़ते हैं जो इसको अनुभव करते हैं वही लोग ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इतना कितना व्यवस्थित ढंग से बोला गया है। हम अभी कोई कॉलेज में पढ़ने जाते हैं
और एक आजकल की इंडियन का इंडियन कॉलेज तो आप जानते हैं, भारतवर्ष में जो कॉलेज आप आईआईटी में कॉलेज के अंदर भी जाइएगा उसके बाउंड्री के अंदर भी गाय और भैंस घास चरते होंगे, कुछ जगह पे इसे मिल जाएंगे। तो शाम को जब होता है वो लोग भी बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं और लड़के लोग भी आ जाते हैं, वर्ष के अंत तक भी चलता रहता है, किंतु वो थोड़ी अनुमोदन होके आते हैं कि ये जो है ना आईआईटी डिग्री प्राप्त किया है या कोई इंजीनियरिंग का डिग्री या मेडिकल का डिग्री मिला बोल के, नहीं उसको अध्ययन करना पड़ता है और वो जो है ना तब वहां से पास आउट होकर आता है। ठीक उसी प्रकार ही ये जो परंपरा दिया गया है ये परंपरा में के द्वारा ही अनुमोदन होकर आना चाहिए। कभी कभी इनके द्वारा अलग विकल्प आ जाता है, लोगों का बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ये संथ तो इस परंपरा में नहीं है, किस हिसाब से जो है ना उनको वो कैसे भगवान उनको दर्शन हो गए, इतना बड़े कैसे हो गए, वो सेकेंडरी पॉइंट है, हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे। किंतु पहला पॉइंट यही है कि हम परंपरा धारा को ग्रहण करना चाहिए, सीधा पॉइंट है। तो मध्वाचार्य जो है ये मध्वाचार्य का जो परंपरा आता है ब्रह्म परंपरा में, हालांकि बाद में चैतन्य महाप्रभु इसी धारा में आए, तो इसीलिए ब्रह्म माध्वा और गौड़ीय संप्रदाय इसको कहा गया। तो हम जिसको वी आर सो मच फॉर्चुनेट दैट कि हम लोग इसी लाइन में आए हैं, क्योंकि इसमें पूरा एकदम सब आचार्यों का निचोड़ ही चैतन्य महाप्रभु डाल दिए हैं। इसमें मध्वाचार्य का भी फिलोसॉफी है, चैतन्य महाप्रभु का भी अचिंत्य भेदाभेद है, हालांकि चैतन्य महाप्रभु का जो अचिंत्य भेदाभेद तो यही मध्वाचार्य से ही सिमिलैरिटी करके ही लाए हैं, इसको दिखाए हैं। तो आज से 1238 शताब्दी में मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ उडुपी में, और वो कर्नाटक की उडुपी में था। और माध्वाचार्य जो है 5 साल की उम्र में दीक्षा ले हो गया था उनका, हमें तो 5 साल की उम्र में पता भी नहीं क्या चल रहा है, किंतु माध्वाचार्य का 5 साल में दीक्षा हो गया और 12 साल की उम्र में जो है ना उनका संन्यास दीक्षा भी हो गया, मतलब कितना भाग्यवान है। और वो बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत अच्छा सुंदर शरीर भी था माध्वाचार्य का, और उनका जो फिलोसॉफी था वो जो था वो द्वैता द्वैतवाद था। वो अभी हम यदि उडुपी में जाएंगे तो वहाँ हम देख सकेंगे किस हिसाब से उनका जो द्वारा स्थापित उडुपी कृष्ण वो गोपी वेश में है, बहुत ही अति सुंदर विग्रह है वो, और वो सेल्फ मैनिफेस्टेड हैं, स्वयंभू वो खुद आविर्भाव खुद के अभिर्भाव हुए हैं, हम देख सकते हैं। तो मध्वाचार्य यहाँ तक कि वो हिमालय भी चले गए थे, और जहाँ से उनको व्यासदेव ने उनको एक शालिग्राम शिला भी दिए थे, और क्योंकि जस्ट मध्वाचार्य से पहले जो है ना शंकराचार्य का जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों का बड़ा ही दबदबा था, और ये लोग पूरा एकदम भयानक आकार से भारतवर्ष को पकड़ के रखे थे। कभी कभी सोचने में बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारतवर्ष को ही क्यों सभी प्रकार का आक्रमण मिलेगा आपको, दूसरे इत्यादियों में तो आहार निद्रा भय मैथुन वाले आक्रमण आपको मिलेगा, यहां पर आपको फिलोसफी का, फिर इधर मतलब भोग का और अलग अलग प्रकार का चीजों का सब आक्रमण मिलेगा, कब कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि समझ में नहीं आ पाता है। तो क्योंकि भारतवर्ष में भगवान का आविर्भाव हुआ यहीं पर, तो जहां भगवान का आविर्भाव होगा वहां पर भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान को ईर्ष्या करने के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान को गाली देने के लिए, भगवान को सभी प्रकार का अच्छा और बुरा कर्म करने के लिए सब लोग तो आएंगे उन्हीं के पास, क्योंकि सबका आराध्य एक ही जन है भगवान कृष्ण। वो कंस का भी ध्यान का वस्तु वही कृष्ण ही थे, गोपियों का भी ध्यान का वस्तु वही कृष्ण ही थे, इसीलिए जीव का स्वाभाविक ध्यान का वस्तु वही है। तो इसीलिए भारतवर्ष में हम यही देख पाएंगे कि अलग 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 सभी क्षेत्रों से जो है ना यहीं पर जो है ना यही लोग आक्रमण करते ही रहते हैं, यहां तक कि यहां तक कई एक पाश्चात्य की भी जो लोग हैं, जो धर्म प्रचारक हैं, यो भी आए हैं भारतवर्ष में भगवान की खोज के लिए। तो यहां हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से माध्वाचार्य शंकर पंथी को और जो लोग नास्तिकवाद हैं, जो मायावाद हैं, उन लोगों को खंडन किया, उनका बहुत बड़ा ये रहा
योगदान रहा, क्योंकि शंकराचार्य जहां जहां गए थे भारतवर्ष में वहां वहां मध्वाचार्य गए और वहां वहां वो प्रचार किए। तो ये जो उडुपी कृष्ण है उसको स्थापना करके फिर और सॉरी 8 मठ और स्थापना किए कि उसको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। और फिर अभी भी चल रहा है वो लोग एकादशी को काफी स्ट्रिक्टली पालन करते हैं और उनका जो फिलोसॉफी जो उनका है उसमें हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ तक भी बोले हैं कि चैतन्य महाप्रभु के वो जो गौड़ीय भाष्य है ये और मध्वाचार्यों का लगभग सिमिलारी है और इसको फॉलो करने के लिए वो जो 9 फिलोसॉफिकल पॉइंट्स दिए हैं उसको गौड़ीय भक्तों को उसको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, यहां तक भी बोला गया है। तो वो इस प्रकार है कि कृष्ण ही परम सत्य है, वेद की जो वास्तव सत्य है भगवान कृष्ण है, जगत सत्य है और ये जो जगत में ईश्वर जीव और जड़ जड़ वस्तु ये तीनों ही अलग अलग हैं, ये सब उनका फिलोसॉफी है। 9 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है और हम भगवान का सेवक हैं और मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा का ये जो कॉन्सेप्ट है, फिर जो है भगवान की ये जो मुक्ति का जो बातें हैं ये भगवान की चरणों में सेवा प्राप्त करना को ही मुक्ति कहा जाता है, ये है मुक्ति मार्ग ही भगवत सेवा है, ये दूसरा पॉइंट है। मुक्ति को लेकर 2 पॉइंट बोल रहे हैं और भगवान को समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द इत्यादि के सभी माध्यमों से हम भगवान को समझ पाएंगे। अंत में यहां तक भी है, ये तो उनका 9 पॉइंट से और भी बताया जा रहा है। ये मतलब चित जगत में माधवी गोपी के नाम से राधा गोविंद जी के सेवा में ये रहते हैं। तो इस प्रकार मध्वाचार्य जी का जीवनी है। तो हम प्रार्थना करेंगे मध्वाचार्य को कि उनका जो फिलोसॉफी हमारा जीवन में हम आचरण कर सकें, अर्थात उनका जो फिलोसॉफी है हम उसी हिसाब से पालन करके भगवान के चरणों में सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकें। हरे कृष्ण। तो किनका कोई यदि प्रश्न है? अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली सत्य बताओ माता जी, ये बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है क्योंकि ये तो जस्ट इतना फिलोसॉफिकल नहीं है बताया गया है, किंतु हम इतना मैं स्पेकुलेट करके बोल सकता हूँ कि फेन उत्पन्न होता है शायद ज़्यादा या और कुछ कारण होगा। नहीं, मैं जस्ट स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है क्या कारण है। किंतु यूजुअली जो पानी के साथ फेन का संपर्क है, फेना वाला पानी को नहीं पीना चाहिए और ये सब करने से फेन उत्पन्न होता है शायद इसीलिए या और कोई कारण हो सकता है। हरे कृष्ण। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय श्रीमद् भागवतम की, जय भगवान रामचंद्र की, जय माध्वाचार्य की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।